लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने जीवन में चीजों और घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह हमारी मानसिकता, आध्यात्मिकता और मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को व्यक्त करता है, जिसके अनुरूप हम अपने बात, व्यवहार और कार्य करने के तरीके में बदलाव की स्थिति पाते हैं। यदि हम अपने जीवन के अंधकार में परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो जीवन की सारी चीजें हमारे लिए काली और अंधेरी प्रतीत होती हैं। वहीं यदि हम अपने जीवन में प्रकाश की उपस्थिति में हैं, अपने को ज्योति से जगमगाता हुआ पाते हैं, तो चाहे हम अपने जीवन में कितनी भी तंगी भरी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम अपने को सकारात्मक रूप से सबल पाते हैं। अतः हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं और बातें, जिनके द्वारा हमारे सोच और विचार प्रभावित होते हैं, हमारे जीवन जीने के सार को व्यक्त करते हैं। श्रोताओ, चालीसा के चौथे रविवार को प्राचीन समय में खुशी या आनंद का रविवार भी कहा जाता था। इस खुशी के मनोभाव को हम आज के सभी पाठों में भी पाते हैं। आइए हम ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आने वाली उसी खुशी का वृतांत सुसमाचार में सुने, जो हमें आशा में आनंदित होने को प्रेरित करता है, क्योंकि ईश्वर हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में अपने साथ आनंदित होने का निमंत्रण देते हैं।
रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें अच्छी की थी, वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने नहाया और अब देखता हूँ।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में वह अंतःदृष्टि प्रदान करे, जिससे हम अपने लिए जीवन की उन बातों को देख सकें, जान सकें और उनका अनुसरण कर सकें, जो हमें अंधकार से जीवन के प्रकाश, अनंत खुशी की ओर ले चलती है। श्रोताओ, नबी सामुएल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए मानव और ईश्वरीय मनोभाव के बीच अंतर स्पष्ट कराता है। सामुएल इसराइलियों के लिए एक राजा का अभिषेक करने जाते और वह ईश्वर की इच्छा अनुसार दाऊद का अभिषेक करने के पूर्व उनके सात भाइयों के शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि मानव बाह्य रूप रंग देखता, लेकिन मैं ईश्वर हृदय देखता हूँ। इस भांति ईश्वर अपने कार्यों के निर्वाहन हेतु एक सरल स्वभाव चरवाहे जो अपने भेड़ों की देखरेख कर रहा होता है उसे चुनते हैं। यहाँ हम अपने को यीशु ख्रिस्त के मनोभावों से रूबरू होता हुआ पाते हैं, जहाँ वे कहते हैं, भला चरवाहा मैं हूँ। भला चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता और उनके लिए अपने प्राण निछावर कर देता है। ईश्वर अपने कार्यों हेतु उनका चुनाव करते हैं जो जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। दाऊद एक चरवाहे के रूप में अपनी भेड़ों की देख रेख करना बाखूबी जानता था, अतः यहवे उन्हें अपनी चुनी हुई प्रजा की देख रेख करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। ईश्वर हम में से प्रत्येक जन को दाऊद की भांति चुनते और अपने कार्यों को पूरा करने हेतु भेजते हैं। श्रोताओ, इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें कहता है कि हम अंधकार में थे, परंतु अब हम ईश्वरीय ज्योति में हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त में हम ईश्वर के संतान बन गए हैं। अतः हमें यीशु ख्रिस्त की ज्योति की संतानों की भांति आचरण करने का निमंत्रण दिया जाता है। ज्योति के कार्य भलाई, धार्मिकता और सच्चाई से उत्पन्न होते हैं। वहीं अंधकार में बुरे कार्य संपन्न होते, जिनसे हमें दूर रहने का आह्वान किया जाता है। श्रोताओ, हम ज्योति और अंधकार का अर्थ समझते और साथ ही इनमें होने वाले कार्यों से भी वाकिफ हैं। हमारे लिए आश्चर्य की बात यही है कि ज्योति और अंधकार का अर्थ समझने के बावजूद हम ज्योति का चुनाव करने के बदले जानबूझकर अंधकार का चुनाव करते हैं। हम अच्छाई और बुराई के बीच अंतर स्पष्ट अच्छी तरह कर सकते हैं, फिर भी हम अच्छाई के मार्ग में चलने के बदले अच्छे कामों को करने की अपेक्षा बुराई के मार्ग में ही चलते बुरे कामों को ही करना पसंद करते हैं। इसका उत्तर हमें आज का सुसमाचार देता है कि ऐसा क्यों होता है। सुसमाचार में यीशु जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगाई प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति का अंधापन उसके माता पिता या किसी के पाप का कारण नहीं था, जैसे कि यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट करते हैं, वरन उसकी स्थिति के कारण ईश्वरीय सामर्थ्यवान कार्य की घोषणा होती है। उस व्यक्ति का अंधापन हम सबों में व्याप्त अंधेपन की ओर इंगित कराता है, जहां हम देखते हुए भी नहीं देखते और जानते हुए भी अच्छे कार्यों को पूरा नहीं करते हैं। यह मानवीय प्रवृत्ति है जो जन्म से ही हम सबों में व्याप्त है। श्रोताओ, सुसमाचार में यही एक ऐसी चंगाई है जहां हम यीशु को शारीरिक रूप से मेहनत करते हुए सुनते हैं। उन्होंने थूका, थूक से मिट्टी सानी और उसे अंधे व्यक्ति की आंखों का लेपन किया। मिट्टी जो हमारे जीवन का अस्तित्व है, जिसके द्वारा हम बने हैं और जिसमें हम एक दिन मिल जाएंगे, हमारे कमजोर मानवीय स्वभाव को व्यक्त करता है, जहां हम सही बातों को जानते हुए भी नहीं कर पाते, जो हमारा अंधापन है। इसका उपचार यीशु मिट्टी के माध्यम ही करते हैं, अर्थात यीशु हमारे लिए नम्रता में झुकते और अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापमय स्वभाव पर विजयी होते हैं। इस भांति जब हम जीवित यीशु को अपने जीवन का अंग बनाते, तो हम अपने कमजोर स्वभाव में विजयी प्राप्त करते हुए सच्ची बातों को देखते और सच्ची चीजों का चुनाव करने के योग्य बनते हैं। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपने बेटे के प्रेम को जानने और समझने हेतु मदद करें, जिससे हम उनके प्रेम की ज्योति में अपने जीवन को संचालित कर सकें, जो दूसरों के लिए सच्चे जीवन की ज्योति बनती है।
धन्य है तू ओ आसरा तू, ओ मेरी माँ, ओ माँ तू ही सहारा, ओ माँ तू ही सहारा।
दुखियों की माँ तू,
ओ मेरी माँ,
दलितों की माँ तू,
ओ मेरी माँ,
करुणामयी माँ तू,
ओ मेरी माँ,
कल्याणी माँ तू,
ओ मेरी माँ।
तेरी शरण में हम सब आए, आशीष पाने माँ।
धन्य धन्य
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 21 मार्च को वैटिकन के संत मार्था प्रार्थनालय में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए परिवारों के लिए प्रार्थना की जो इस समय कोरोना वायरस के कारण घरों में अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। प्रवचन में उन्होंने अपने आप को धर्मी माने बिना दीनता से प्रार्थना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, आज मैं परिवारों की याद करता हूँ जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। शायद उनके लिए एक ही क्षितिज है बालकनी। परिवार में बच्चे, जवान बेटे बेटियां और माता पिता एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि वे परिवार में प्रेमपूर्ण संबंध बनाकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहना जानते हैं। वे इस समय परिवार में एक साथ चिंताओं से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में आज हम परिवारों में शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रवचन में संत पापा ने आज के पाठों पर चिंतन किया, जिसमें पहला पाठ नबी होशेया के ग्रंथ से तथा सुसमाचार पाठ संत लूका सचित सुसमाचार से लिया गया है। कल के पाठ में आह्वान किया गया था कि प्रभु अपने ईश्वर के पास लौट आओ। आज उस आह्वान का जवाब दिया गया है, आओ हम प्रभु के पास चलें। जब घर वापस लौटने की बात हृदय को छूती है, तब हम प्रभु के पास आते हैं। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वे पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएंगे। संत पापा ने कहा कि इस आशा से लोग प्रभु की ओर लौटने हेतु अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और प्रभु को पाने का एक रास्ता है प्रार्थना। सुसमाचार में यीशु हमें सिखलाते हैं कि हमें किस तरह प्रार्थना करना है। दो व्यक्ति थे, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने आप को धर्मी मानता था और दूसरों को तुच्छ समझता था। वह ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ और न ही इस नाकेदार की तरह। दूसरे व्यक्ति नाकेदार के बारे सुसमाचार बतलाता है कि वह वेदी के नजदीक नहीं जाता, बल्कि दूर ही खड़ा होकर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। संत पापा ने कहा कि इसके द्वारा प्रभु हमें सिखलाना चाहते हैं कि हम किस तरह प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए हमें प्रभु को अपने सारे पापों और कमजोरियों को बिना ढके दिखलाने की आवश्यकता है। संत पापा ने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा कि आइए हम प्रभु की शिक्षा को ना भूलें, घमंड से अपने आप को न्याय संगत न ठहराएं, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। कार्डिनल माउरो प्याचेंसा ने वैटिकन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि दंड मोचन संकट की इस घड़ी में करुणा का एक महान आंचल है। महामारी के आपातकालीन स्थिति में प्रदान किए गए दंड मोचन या पाप मुक्ति के अध्यादेश की व्याख्या करते हुए प्रायश्चित विषय के प्रमुख कार्डिनल माउरो प्याचेंसा ने कहा कि कलीसिया का सबसे बड़ा नियम है आत्माओं की मुक्ति।
शनिवार 21 मार्च को वाटिकन में संत पापा फ्रांसिस ने आइवरी कोस्ट गणराज्य के नए राजदूत श्री लुइस लेवोन बोगी बोनी से मुलाकात की और उनके प्रत्यय पत्र को स्वीकार किया। श्री बोनी लेवोन का जन्म 9 नवंबर 1957 को पेरिस में हुआ था। वे शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं। श्री लुइस लेवोन ने अब्दिजान विश्वविद्यालय में लॉ में डिप्लोमा, पेरिस डे विश्वविद्यालय के अफ्रीका रिसर्च सेंटर से इतिहास में डिग्री और राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की है। लुइस ने अनेक पदों में अपनी सेवाएं प्रदान की। वे कनाडा के राजदूत रह चुके हैं। उधर शुक्रवार को एक वीडियो संदेश में मुंबई के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने खजूर रविवार की पूर्व संध्या तक सामूहिक पूजन धर्म विधियों को निलंबित कर दिया है और रविवार 22 मार्च को भारत के राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का सम्मान करने के लिए सभी विश्वासियों से आग्रह किया है। शुक्रवार को धर्म प्रांतीय वेबसाइट पर अपने वीडियो संदेश में कार्डिनल ओसवाल्ड ने कहा, यह स्पष्ट है कि घातक कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, सभी के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा है। गुरुवार को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की कि वे 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का निरीक्षण करें ताकि राष्ट्र में लगभग 1.3 बिलियन की आबादी कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक अलगाव का परीक्षण करने का एक हिस्सा बन सके। कार्डिनल ग्रेशियस ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर और हमारे लोगों की सुरक्षा के हित में जो सर्वोपरि है, मैंने शुक्रवार 20 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2020 खजूर रविवार की पूर्व संध्या तक मुंबई के महाधर्म प्रांत के सभी सामूहिक धर्म विधियों को निलंबित करने का फैसला किया है। कार्डिनल ग्रेसियस भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCI के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि क्रिश्चिय टीवी चैनलों जैसे EWTN, गुडनेस टीवी और शालोम द्वारा टेलीकास्ट पवित्र मिसा समारोह का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि कार्डिनल स्वयं रविवार को सुबह 9 बजे महाधर्म प्रांत के ख्रिस्तियों के लिए पवित्र मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करेंगे, जिसे महाधर्म प्रांतीय YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। एक कठिन और तनावपूर्ण समय को देखते हुए कार्डिनल ग्रेशियस ने कहा, हमें ईश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। महाधर्म प्रांत के गिरजाघर हर दिन पवित्र संस्कार की भेंट करने और व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए कुछ घंटों तक खुले रहेंगे। भारत के अन्य धर्म प्रांतों ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ निवारक उपायों को अपनाया है और सामूहिक पूजन धर्म विधियों को निलंबित कर दिया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।